हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफल पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्व अहम् न जाने। यम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 16 अत्यंत सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी आज भगवान की एकादश अवतार यानी 11वें अवतार के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं सुरा सुराणाम उदधिं मत्नताम मंदराचलम दत्रि कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशी विभुम सुरासुराणाम उदधिं मत्नताम मंदराचलम दत्रि कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशी विभुम सुरासुराणाम उदधिं मत्नताम मंदराचलम दत्रि कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशी विभु सुरासुराणाम उदधिं मत्नताम मंदराचलम दत्रि कमंठरूपेण पृष्ठ एवा एकादशो विभु सुरासुराणाम उदधिं मत्नताम मंदराचलम दत्रि कमंठरूपेण पृष्ठ एकादशी विभु सुरासुराणाम उदधिं मत्नताम मंदराचलम दत्रि कमठरूपेण पृष्ठ एकादशी विभु। शब्दों का अर्थ सुरासुराणाम उदधिं सुर अर्थात अस्तिकों असुर असुराणाम अर्थात नास्तिकों का उदधिम यानी समुद्र को मथनताम मंथन करते हुए मंदराचल मंदराचल का मतलब होता है एक पर्वत है उसका नाम है बहुत बड़ा पर्वत है उसका नाम है मंदराचल दध्रे यानी धारण किया कमठ रूप में अर्थात कच्छप रूप में पृष्ठ एकादशी विभु पृष्ठ मतलब पीठ पर और एकादशी मतलब 11वां विभु मतलब महान। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ जिसकी पीठ विश्व के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बने। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। एक बार आस्तिकों तथा नास्तिकों दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने के लिए उसमें जुटे कार्य में जुटे हुए थे जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और भगवान के अवतार कच्छप की पीठ पर कठोर पीठ समुद्र की जल में पर्वत के लिए आधार बनाई गई। श्लोकपाद की जय हो। आज सूत गोस्वामी उन 88,000 ऋषियों की सभा में भगवान की अत्यंत ही मनोहर एक रूप, जिसमें भगवान की बहुत ही सुंदर लीला है, उसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान ने आज कच्छप का अवतार, जो लिखा हुआ ना कमठ रूप है, यानी कि कच्छप का अवतार लिया। तो ये बहुत ही सुंदर भगवान का अवतार है। ये भगवान की करुणा है कि भगवान आज कच्छप अवतार में देवताओं और असुरों के द्वारा मथे जाने वाले मंथन, समुद्र मंथन में उनका सहभागी बन रहे हैं, उनका सहायक बन रहे हैं। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर, उनके गले में माला थी भगवान की, मोतियों की, वो फूलों की माला थी, और वो फूलों की माला उसने इंद्र को दी, देवराज इंद्र को दी प्रसन्न होकर। लेकिन देवराज इंद्र उस समय बहुत घमंड में, अब देवराज थे यानी कि देवताओं के राजा थे, तो उसने महर्षि का सत्कार नहीं किया और उस माला को अपने हाथी जो सामने खड़ा था, आपको पता है देवराज का हाथी, उनको पहना दी। तो दुर्वासा मुनि ने उन्हें ये श्राप दिया कि आपका राज्य छिन जाएगा, यानी आपका पतन हो जाएगा। तो ऐसा सुनने के बाद, इतना होने के बाद क्या हुआ कि असुरों ने जब आक्रमण किया तो देवताओं का राज्य उन्होंने ले लिया। अब देवता जो है वो दरबदर भटक रहे थे क्योंकि राज्य असुरों ने ले लिया था। अब क्या कि देवता गए भगवान के पास और कहा कि अब हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आ गई है तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो ये देवताओं का स्वभाव है, भले उनके अंदर कोई अवगुण भी है कि उनको है ना देवता होने के कारण कोई अहंकार होता है या मान सम्मान की इच्छा या कुछ भी हो, लेकिन उनको ऊपर जब विपत्ति आती है तो वो डायरेक्ट से जाते हैं भगवान के पास। ये देवता, अब यहाँ पर इतना सुंदर दो शब्द लिखे हुए हैं, सुरा सुराणाम उदयम, सुर यानी आसिक। अब सुर और असुर की अगर हम सिंपल शब्द में व्याख्या करें तो सुर का मतलब है जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, यानी जो आस्तिक है, जो भगवान को मानते हैं और जो भगवान की बात, कही हुई बात का सम्मान करते हैं और उनकी शरण में होते हैं। और असुर का मतलब होता है जो भगवान की, ऐसे भी बोलते हैं ना, सुर का मतलब होता है जो भगवान के सुर में सुर मिलाए, और असुर का मतलब होता है जो भगवान के सुर के सुर में सुर ना मिलाए। और भगवान ने ये, अगर हम इस श्लोक में देखें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शब्द दिख रहे हैं कि भगवान ने सुर और असुरों के लिए सुरा सुराणाम उदधिम मतनताम मंदराचरम, इसमें यानी कि भगवान की कोई अपनी इच्छा नहीं थी, सुर और असुरों के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ये कार्य किया। और मैं आपको बताऊं कि ये सुर और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया था ना, उसमें भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे ना सुरासुर, ये समुद्र मंथन की लीला, तो हर रोज कोई नया अवतार उसके अंदर होता था और इसमें भगवान का विवाह भी हुआ था। तो जब बता रहे थे तो फिर है ना परीक्षित ने बोला, अच्छा ये इतनी सारी अवतार, तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला हाँ इतनी सारी अवतार है, मेरे को हैरान हूँ कि भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान इतने सारे अवतार लिए हैं। इतने सारे अवतार तो भगवान ने किसी और लीला में नहीं लिए, एक साथ एक के बाद दूसरा अवतार हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर लीला है। तो जब देवता और असुर, ये है सुर और असुर, उनके विषय में बहुत बहुत भगवान ने बताया है। अब ये इन दोनों को समुद्र मंथन करना था, लेकिन सुर और असुर को पहले हम जानेंगे कि वो कौन होते हैं। तो उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बहुत श्रीमद् भागवत गीता के 16 चैप्टर में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है असुरों का। सुर को तो सब समझते हैं, बस सिंपल है जो भगवान के सुर में सुर मिलाए, कि जो भगवान की बात को मानता है, जो भगवान को सरेंडर करता है, जो शास्त्रों का आदेश को पालन करता है, जो भगवान को मानता है कि मैं भगवान, हे भगवान। और बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भागवतम के आगे, हमें दसवें स्कंद में पढ़ने को मिलेगा कि सुर का क्या मतलब होता है। चाहे विपत्ति हो या आपत्ति हो, यानी कि उसको अगर बहुत 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 ना विपत्ति मिलती है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो क्या भगवान को कहता है, धन्यवाद कृष्णा, मैंने बहुत अपराध किए हैं, करोड़ों करोड़ जन्मों में मैंने बहुत अपराध किए होंगे, और आप मुझे ये विपत्ति, ये कष्ट देकर मुझ पर कृपा कर रहे हो, अपराधों का सिला, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा अपराध किए थे, लेकिन ये आप उतना ही दे रहे हो जितना मैं बर्दाश्त कर सक रहा हूँ, और ये इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा पूरा काला चिट्ठा तुम खत्म करना चाहते हो, और इन अपराधों की सजा मुझे इसी जन्म में मिल जाएगी ताकि मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ये सोच होती है सुर की। और अगर उसे सुख मिलता है ना, तो ये नहीं कहता कि मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, भगवान की तो कितनी कृपा है तुम्हारी कृष्णा, कितनी करुणा है, मैं जानता हूँ, सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि उसको हृदय में ये रियलाइज होता है कि इतने सारे सुखों को भोगने का अधिकारी नहीं हूँ मैं, लेकिन ये कृष्ण की कृपा है कि मुझे कितनों से बेहतर बनाया है ना, कि मेरे पाँव में जूते नहीं है, लेकिन संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पाँव नहीं है, तो ये कृष्ण की कृपा, मेरे कर्म इतने सुंदर हो नहीं सकते जितनी ज्यादा भगवान की कृपा है। तो हर हाल में जो कहे थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज, ये है सुर का कार्य। और भगवान से एक ही प्रार्थना, ये नहीं कि मुझे ये दे दो ये दे दो ये दे दो, भगवान के सामने जाकर केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, वो सुर क्या कहते हैं, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, मुझे ये बताओ कि मैं इस समय, ये जो वर्तमान समय है एज इट इज, उसको मैं कैसे आपकी सेवा में लगाऊं। सुर भगवान के सामने आकर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते कि भगवान ये समस्या का समाधान हो जाएगा फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा, आज मेरे बच्चे छोटे हैं कल बड़े हो जाएंगे फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा, अभी मेरा सीजन चल रहा है, सीजन समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं आपकी भक्ति करूंगा, अभी है ना मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा, नहीं, उनका केवल एक ही विचारधारा है, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज। कृष्ण अब देखो जो सिचुएशन है वो तुम्हारे सामने है, आप समाधान दो कि इस सिचुएशन में मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, जैसे आप मुझे प्रेरणा दोगे मैं वैसे ही आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य इन समस्याओं से जूझना नहीं है, ये समस्याएं आई हैं तो उनका समाधान भी स्वयं ही आ जाएगा, मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, तो आप मुझे केवल इतना बता दो कि मैं इस समस्याओं से को फेस करते हुए, जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको फेस करते हुए मैं आपकी कैसे भक्ति करूं, ये होता है सुर। अब हम असुर के बारे में जाने, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर बताया श्रीमद भगवद गीता चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 13, 14, 15 और 16 में। जो असुर होते हैं ना वो क्या कहते हैं, इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदम् अद्य मया लब्धम्, यानी कि ये जो मैंने अब तक प्राप्त किया है ना वो सब मैंने अपनी अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, जो कुछ भी मेरे पास है, धन सौंदर्य यश वैभव जो कुछ भी है वो मैंने प्राप्त किया है, और एवं प्राप्स्ये मनोरथम, अपनी योजनाओं से प्राप्त किया है, मैंने बहुत अच्छी, मैं इतना सक्सेस आ सकर हूँ, तो उसमें केवल और केवल सारा श्रेय मुझे जाता है, आज मैं इतना सक्सेस हूँ, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई नहीं था, मैं अकेले लड़ा दुनिया के साथ और ये मैंने बनाया। ये हमारे सामने असुर कोई राक्षस स्वरूप लेकर, दो सींग लेकर, बड़े बड़े दांत, काला काला मुंह लेकर नहीं आएंगे, ये जो कहे ना कि आज मेरे पास जो कुछ भी है मैंने अपनी मेहनत से किया है, तो समझ लो कि ये तुम्हारे सामने असुर है और आगे कहता है इदमस्ति दवापि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। अभी तो मेरे पास इतना है और मेरी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि मैं भविष्यन्ति पुनर्धनम्, भविष्य में मैं और भी अधिक इकट्ठा करूंगा। मेरा और भी, मेरी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि आगे के 5 साल तक अगर ये चलता रहा ना मेरा, फिर देखना ऐसा जबरदस्त मेरा सारा कारोबार, ये चलेगा वो चलेगा। मैंने इतना योजना है मेरी, इतनी परिपूर्ण है मेरी प्लान्स जो मैंने किए हैं ना, फ्यूचर प्लानिंग वो तो एकदम सुपर है। और आगे वो क्या कहता है, असोमया हत शत्रु हनेशी चापरान भी, कि वो मेरा शत्रु था ना, जब भी मैं कार्य करता था वो कोई ना कोई मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था और मैंने उसको खत्म करवा दिया, यानी कि वो मेरा शत्रु था इसलिए मर गया। अब